बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ ओम की इस मधुर ध्वनि से किया परिवर्तन प्रेम शांति सिखा के बदला सभी का जीवन आदि देव प्रजा पिता श्री बोलते ध्वनियों से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ ओ सोहनी सूरत मोहनी मूरत ज्ञान के मोती भव्य मुख पर चंद्रमासी चमकती ज्योति दिव्य दर्शन दिव्य वाणी बोलते ध्वनियों मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे ओ विश्व में थी पाप की जब घटा छाई तब विभूति आप जैसी धरती पे आई एक तार में बंध के सारे बोलते ध्वनियों से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों ब्रह्म से शिव बाबा पधारे बोलते ध्वनियों ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी बोलते ध्वनियों शिव बाबा पधारे ओ ओ ओ
ओम शांति। ओम शांति। सत गुरुवार की गुड मॉर्निंग और साथ साथ क्रिसमस की भी बहुत बहुत बधाइयां। आज तो दुनिया में खास करके पश्चिमी दुनिया में, अभी तो पूर्वी दुनिया में भी बहुत क्रिसमस धूमधाम से मना रहे होंगे, पर बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए तो रोज त्योहार है, रोज खुशियां हैं। वो तो चलो एक दिन खुशी मनाएंगे, फिर अगले दिन तो वही गम होगा, पर हमारे लिए तो रोज त्योहार है, रोज खुशियां हैं, रोज ही। हाँ बाबा कहते हैं नाचो गाओ, लेकिन वो स्थूल रूप में नहीं, पर मन से जरूर नाचो गाओ। क्यों? क्योंकि अब हमारी नई दुनिया आने वाली है, नया युग आने वाला है, वो सतयुग जिसका बाबा हर मुरली में भिन्न भिन्न रूप से वर्णन करते हैं। तो हमारी नजरों में तो केवल घर और नई दुनिया है, बाकी तो बाबा कहते हैं देखते हुए भी नहीं देखो। तो आज बाबा ने बहुत प्यार भी किया है, बहुत प्यार किया है और साथ साथ शिक्षाएं भी दी है। पिता है ना, तो पिता तो प्यार भी देगा और फिर शिक्षाएं भी देगा। तो प्यार में बाबा ने कितनी हमारी महिमा की है। तुम बच्चे मेरे सिक्की लदे बच्चे हो। सिक्की लदे क्यों हो? क्योंकि बिछड़ गए थे 5000 साल पहले, मेरे से बिछड़ गए थे और अभी 5000 साल के बाद मिले हो। तो सोचो हम कितने सिक्की लदे हैं भगवान के बच्चे। कोई बच्चा गुम हो जाता है और फिर वो ढूंढ ढूंढ करके फिर मिल जाता है, तो देखो कितना वो प्यारा लगता है। तो हम भी बाबा के कितने प्यारे बच्चे हैं। तो रोज नए नए टाइटल तो बाबा देते ही हैं, आज भी दिए हैं, पर साथ साथ शिक्षाएं भी दी है। क्या शिक्षा दी है? कि बच्चे तुम्हें हर परिस्थिति में अचल अडोल रहना है। किसने अगर कुछ कह भी दिया तो बाबा कहते हैं हाँ निराश नहीं होना है। बाबा कई बार कहते हैं छुई हुई नहीं बनना है, मूड ऑफ नहीं करनी है, दुखी नहीं होना है, यही समझना है कि ड्रामा में इसका यही पार्ट है, या भी ड्रामा हो गया पूरा पूरा हुआ, जो पल बीता वो पूरा हुआ, फिर कल्प के बाद आएगा। लेकिन मुझे अचल अडोल रहना है, ड्रामा पर सदा स्थिर रहना है, एक रस अवस्था बनानी है। तो आज बाबा ने इस पर भी बहुत जोर दिया है। सुनते हैं बाबा के महावाक्य। आज 25/12/2025 है। मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए क्या हो? इसलिए तुम बहुत बहुत सिक्की लदे हो। सिक माना बहुत इच्छा, बहुत एकदम अंदर में प्यार जागता है ना, तो उसको सिक कहते हैं। बड़ा सिक्की सिक है, तो लदे माना मिलना, तो बहुत अंदर में प्यार जागा, लेकिन बिछड़ गया था और फिर वो बच्चा मिला तो कितना सिक्की लदा हो जाता है। तो मीठे बच्चे, तुम बहुत समय के बाद फिर से बाप से मिले हो, इसलिए तुम बहुत बहुत सिक्की लदे हो। प्रश्न है, अपनी स्थिति को एक रस बनाने का साधन क्या है? सदा हमारी स्थिति एक रस रहे, उसका साधन क्या है? उत्तर, सदा याद रखो जो सेकंड पास हुआ ड्रामा, सदा याद रखो जो सेकंड पास हुआ ड्रामा, कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था। तो क्या होगा? हाँ, प्रश्न नहीं उठेंगे, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, ये नहीं होना चाहिए था आदि आदि। तो बाबा कहते कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, अभी तो निंदा स्तुति मान अपमान सब सामने आना है, अनेक जन्मों के हिसाब किताब चुकतु होने हैं, तो ये सब सामने आना है। इसलिए अपनी स्थिति को एक रस बनाने के लिए पास्ट का चिंतन मत करो, पास्ट का चिंतन मत करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। क्या कहेंगे? शिव बाबा, है ना। किसी से पूछो रूहानी बाप का नाम क्या है, पहले तो वो समझेगा ही नहीं ये रूहानी बाप क्या होता है। आप पिता का नाम पूछो ना, रूहानी बाप किसको कहते वो भी किसको पता नहीं होगा। तो रूहानी बाप का नाम क्या है? शिव बाबा। वो सब रूहों का बाप है। सब रूहानी बच्चों का नाम क्या है? हम सब रूहानी बच्चे हैं, तो हमारा नाम क्या है? आत्मा। आत्मा जीव का फिर नाम पड़ता है, फिर शरीर मिला तो शरीर पर नाम पड़ता है, आत्मा का तो नाम वही रहता है। ये भी बच्चे जानते हैं, सत्संग तो ढेर है दुनिया में, कितने सत्संग है। ये है सच्चा सच्चा सत का संग, जो सत बाप राजयोग सिखाकर हमको सतयुग में ले जाते हैं। ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती है जहाँ सत बाप सत राजयोग सिखाकर सतयुग में ले जाए। बाबा कहते हैं ऐसे और कोई भी सत्संग व पाठशाला नहीं हो सकती है। ये भी तुम बच्चे जानते हो कि और कोई ऐसे पाठशाला है ही नहीं। सारा सृष्टि चक्र तुम बच्चों की बुद्धि में है, तुम बच्चे ही स्वदर्शन चक्रधारी हो। पहले बताया सिकील दे हो, फिर बताया स्वदर्शन चक्रधारी हो। बाप बैठ समझाते हैं ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। किसको भी समझाओ तो चक्र के सामने खड़ा करो। अब तुम इस तरफ जाओ जाएंगे, उनको बताओ कि अब यहाँ खड़े हैं संगम पर, अब इस तरफ जाना है, सत्युग की तरफ जाना है। अब तुम इस तरफ जाएंगे तो बाप जीव आत्माओं को कहते हैं अपने को आत्मा समझो। अब ये नई बात नहीं है, बाबा जीव आत्माओं को कहते अपने आप को आत्मा समझो, ये नई बात नहीं है। जानते हो कल्प कल्प ये सुनते आए हैं, हर कल्प में बाबा ने हमें ये ज्ञान दिया है, अब फिर से हम सुन रहे हैं। तो तुम्हारी बुद्धि में कोई भी देहधारी बाप टीचर गुरु नहीं है, तुम जानते हो विदेही शिव बाबा हमारा टीचर भी है और गुरु भी है। और कोई सत्संग में ऐसी बातें नहीं करते होंगे। मधुबन तो ये एक ही है, मधुबन में मुरली बाजे तो बाबा कहते हैं मधुबन ये एक ही है जहाँ भगवान की मुरली बजती है। वो फिर एक मधुबन वृंदावन में दिखाते हैं। ये भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बैठ बनाई है वह वृंदावन में। हाँ, वो दिखाया है कि वह रात को गोपियां आती थी और कृष्ण कैसे बांसुरी मुरली बजाता था, और अगर कोई रात को छिप करके वहां बैठा और देखा सारा तो वो अंधा हो जाता था। फिर वो कुछ जा करके बाहर वर्णन किया तो गुग्गा हो जाता था, ऐसे ऐसे बताते। तो बाबा कहते हैं वो भक्ति मार्ग में मनुष्यों ने बेड बनाए हैं, प्रैक्टिकल मधुबन तो ये है, भगवान के घर में आते हैं और यहाँ से कुछ न कुछ अगर उल्टा ले गए, कुछ नेगेटिव सोच लिया, तो फिर जाकर उसकी क्या गति होगी। तो प्रैक्टिकल मधुबन तो ये है, तुम्हारी बुद्धि में है कि हम सतयुग त्रेता से लेकर पुनर्जन्म लेते लेते अब कहाँ खड़े हैं, अभी संगम पर आकर के खड़े हैं पुरुषोत्तम बनने के लिए। हमको बाप ने आकर के स्मृति दिलाई है 84 जन्म कौन और कैसे लेते हैं वो भी तुम जानते हो। मनुष्य तो सिर्फ कह देते हैं 84 का चक्र ऐसे कह देते हैं, परंतु समझते कुछ भी नहीं। बाप अच्छी रीति समझाते हैं, सतयुग में सतो प्रधान आत्माएं थी, शरीर भी सतो प्रधान थे। जब बाबा ऐसे कहते हैं ना, तो उस समय ले जाना चाहिए बुद्धि को वहां सतयुग में, कैसे हम सतो प्रधान थे, हमारा शरीर भी कितना सतो प्रधान था। इस समय तो सतयुग नहीं है, ये है कलयुग। गोल्डन एज में हम थे, याद करो हम गोल्डन एज में थे, फिर चक्र लगाकर पुनर्जन्म लेते लेते हम आयरन एज में आ गए हैं। अब फिर से चक्र जरूर लगाना है, अभी जाना है अपने घर। तुम सिक्की लदे बच्चे हो ना, सिक्की लदे उनको कहा जाता है जो गुम हो जाते हैं फिर बहुत समय के बाद मिलते हैं। तुम भी 5000 वर्ष के बाद आकर के मिले हो, तुम बच्चे ही जानते हो। क्या जानते हो? ये वही बाबा है जिसने 5000 वर्ष पहले इस सृष्टि चक्र का हमको ज्ञान दिया था, स्वदर्शन चक्रधारी बनाया था। अभी फिर से बाप आकर के मिले हैं जन्म सिद्ध अधिकार देने लिए। क्यों मिले हैं बाप? जन्म सिद्ध अधिकार देने के लिए। यहाँ बाप रियलाइज कराते हैं, महसूस कराते हैं, ये सब बातें महसूस कराते हैं, बरोबर तुम ऐसे थे, फिर कैसे चक्र लगाया, अभी फिर घर जाना है, तो महसूस कराते हैं। इसमें आत्मा के 84 जन्मों की भी रियलाइजेशन आ जाती है, महसूसता आ जाती है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं, जैसे 5000 वर्ष पहले भी समझाया था, नई बात नहीं है। मनुष्य को देवता या कंगाल को सिरताज बनाने के लिए ही समझाया था। तुम समझते हो हमने 84 पुनर्जन्म लिए हैं, जिन्होंने नहीं लिए हैं, हाँ बाबा कहते हैं तुम समझते हो कि हमने पूरे 84 जन्म लिए, पर जिन्होंने नहीं लिए हैं वो यहाँ सीखने के लिए आएंगे ही नहीं। तो क्या सिद्ध हुआ कि हम सब ने 84 जन्म लिए, क्योंकि यहाँ हम सीखने के लिए आए हैं तो जरूर हमने 84 जन्म लिए हैं। तो जिन्होंने नहीं लिए वो तो यहाँ सीखने के लिए आएंगे ही नहीं। कोई थोड़ा समझेंगे, नंबरवार तो होते ही हैं, तो अपने अपने घर गृहस्थ में भी रहना है, सब तो यहाँ आकर के नहीं बैठेंगे। रिफ्रेश होने वो आएंगे, कौन आएंगे बच्चे रिफ्रेश होने बाबा के घर? जिनको बहुत अच्छा पद पाना होगा। अब अच्छा पद पाना ही नहीं है, कहेंगे देखेंगे सोचेंगे, हाँ जाएंगे, कभी तो जाएंगे ही, लेकिन आते ही नहीं है। हाँ तो बाबा कहते हैं जरूर उनको अच्छा पद नहीं पाना होगा, लेकिन जो समय से नहीं जाना ही है तो जरूर उन्होंने अच्छा पद पाया होगा। कम पद वाले जास्ती पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे, जिनको बड़ा अच्छा पद मिलना होगा वो ज्यादा पुरुषार्थ भी करेंगे। ये ज्ञान ऐसा है जो बाबा कहते हैं जो थोड़ा भी अगर पुरुषार्थ किया तो वो व्यर्थ नहीं जाएगा, सजा खाकर आ जाएंगे। पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती है, जैसा पुरुषार्थ फिर उसी अनुसार पद, फिर ज्यादा अच्छा पद तो कम सजा, अगर कम पद तो माना ज्यादा सजा। तो पुरुषार्थ अच्छा करते तो सजा भी कम होती है। याद की यात्रा बिगर विकर्म तो विनाश नहीं होंगे। ये तो घड़ी घड़ी अपने को याद कराओ। कोई भी मनुष्य मिले पहले तो उनको ये समझाना है। कौन सी बात पहले पहले समझानी है? अपने को आत्मा समझो। ये नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं। अब तुम्हारा जो भी ये नाम है, ये तो तुम जब पैदा हुए उसके 6 दिन के बाद आपके माता पिता ने या किसी ने नाम रखा। पहले भी तो आप थे ना, तो पहले आप कौन थे? तो कहेंगे आत्मा थे। तो ये नाम तो पीछे शरीर पर मिले हैं, हम किसको बुलाएंगे? तो शरीर के नाम पर ही बुलाएंगे। इस संगम पर ही बेहद का बाप रूहानी बच्चों को बुलाते हैं। अब शिव बाबा, हम बच्चे जो रूहानी बच्चे हैं उनके, तो हमको कैसे बुलाएंगे? तुम कहेंगे हाँ रूहानी, बाबा कहेंगे रूहानी बच्चे, फिर नाम लेंगे, है ना? रूहानी बच्चे तो सभी है, लेकिन कौन सा रूहानी बच्चा? फिर शरीर का नाम लेना होता है। तो बाबा कहते हैं तुम कहेंगे रूहानी बाप आया है, और बाप कहेंगे रूहानी बच्चे। तो पहले रूह हाँ रूहानी बच्चे कहेंगे, फिर बच्चों का नाम लेते हैं, फिर शरीर का नाम लेंगे। रूहानी बच्चे बच्चों, तुम समझते हो रूहानी बाप क्या समझाते हैं? हाँ सभी समझते हो ना, माताएं सब समझ रही हो ना बाबा क्या समझाते हैं? हाँ सिर हिलाओ। हाँ तुम्हारी बुद्धि जानती है शिव बाबा इस भागी रथ पर विराजमान है। हमको वही सहज राजयोग सिखा रहे हैं, और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाए। और कोई मनुष्य मात्र नहीं, एक ही ब्रह्मा बाबा है जिसके माध्यम से शिव बाबा ये राजयोग सिखा रहे हैं। और कोई मनुष्य मात्र नहीं जिसमें बाप आकर राजयोग सिखाए। वो बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर, और कोई भी मनुष्य कभी ऐसे कह न सके, समझा न सके हाँ मैं आता हूँ पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्रह्मातन में, और कोई ऐसे बता न सके। ये भी तुम जानते हो ये शिक्षा कोई इस बाप की नहीं है, ये शिक्षा ये ब्रह्मा बाप की नहीं है। इनको तो ये मालूम ही नहीं था। बाबा को जब भक्त थे, बाबा विष्णु की भक्ति करते थे, तो उस समय तो उनको ये मालूम ही नहीं था कि कलयुग खत्म हो सतयुग आना है, पता ही नहीं था बाबा को। इनका अब कोई देहधारी गुरु नहीं है। हाँ पहले तो बहुत गुरु किए ना इन्होंने, 12 गुरु किए, परंतु जब श्री शिव बाबा की प्रवेशता हुई तब थोड़ी कोई और गुरु किया, पर शिव बाबा भी उनका सतगुरु। तो बाबा कहते हैं अब तो इनका कोई देहधारी गुरु नहीं है, और तो सब मनुष्य मात्र कहेंगे हमारा फलाना गुरु है, फलाना ज्योति जो समाया। फिर पूछेंगे वो गुरु आपका कहाँ है? अभी तो वो नहीं है, देह त्याग किया है। तो कहेंगे हमारा गुरु तो ज्योति जोत समाया। सबके देहधारी गुरु है, धर्म स्थापक भी तो देहधारी है ना। ये धर्म किसने स्थापन किया? आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया? परम पिता परमात्मा त्रिमूर्ति शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापन किया। इनके शरीर का नाम ब्रह्मा रखा। क्रिश्चियन लोग कहेंगे क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया। अब वो तो देहधारी है, शरीर रूप में देखेंगे, चित्र भी है। अब इस धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? देवी देवता धर्म के स्थापक का चित्र क्या दिखाएंगे? तो शिव का ही दिखाएंगे। शिव के चित्र भी कोई बड़े कोई छोटे बनाते हैं। हाँ, शिवलिंग कोई बहुत छोटा बनाएंगे, कोई तो बहुत बड़े बड़े शिवलिंग बनाते हैं। है तो वो बिंदी ही, नाम रूप भी है परंतु अव्यक्त है। शिव बाबा का नाम भी है रूप भी है लेकिन वो अव्यक्त है, इन आंखों से नहीं देख सकते। शिव बाबा तुम बच्चों को राज्य भाग्य देकर गए हैं तब तो याद करते हैं ना। हाँ, याद करते हैं क्योंकि वो राज्य भाग्य देकर गए हैं। शिव बाबा कहते हैं मामेकम याद करो मनमना भव, मुझ एक बाप को याद करो, किसकी स्तुति नहीं करनी है। और कोई बाबा कहते देवताओं की ऐसे जैसे शिव बाबा की हम करते हैं औरों की ऐसे नहीं करनी है, ना कोई मनुष्यों की बहुत महिमा भी करनी है। आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद ना आए, क्योंकि देहधारियों को याद करेंगे उनका ही गुण गाते रहेंगे तो देहधारी याद आएंगे। तो बाबा कहते आत्मा की बुद्धि में कोई देह याद ना आए, ये अच्छी रीति समझने की बात है। हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं सारा दिन ये रिपीट करते रहो। शिव भगवानो वाच, पहले पहले तो अलफ ही समझाना पड़े, ये पक्का नहीं किया अलफ। फिर बाबा कहते बे फिर ते, हाँ ये पक्का नहीं किया अलफ तो बे ते बताया तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। सत्यों की बादशाही भी बताई लेकिन अलफ की पहचान दी नहीं कि कौन देता है बे बादशाही, तो फिर भी समझेंगे नहीं। फिर ते बताओ, तेम ये उर्दू के अल्फाबेट्स हैं, जैसे इंग्लिश में ए बी सी, हिंदी में क ख ग, तो उर्दू में अलफ बे ते कहते हैं। तो बाबा कहते ते फिर क्या है, सृष्टि चक्र का ज्ञान। तो बाबा कहते वो तो बिल्कुल समझेंगे नहीं। तो बाबा कहते ये पक्का नहीं किया अलफ को तो बे ते बताई तो कुछ भी बुद्धि में बैठेगा नहीं। कोई कह देते हैं ये बात तो राइट है, सच्ची बात है, और बातें कैसे बुद्धि में बैठेगी जब तक हमने परमात्मा को नहीं पहचाना है। कोई कहते हैं अभी समझने में टाइम चाहिए, ये सारी बातें जो आप बताते हो इनको समझने में टाइम चाहिए। कोई कहते हैं कि चलो वो टाइम थोड़ा देते भी हैं फिर कहेंगे विचार करेंगे, हमको ये लेना है नहीं लेना विचार करेंगे। किस्म किस्म के लोग आते हैं, ये है नई बात। परम पिता परमात्मा शिव आत्माओं को बैठ पढ़ाते हैं तो विचार चलता है, बाबा को विचार चलता है कि क्या करें जो मनुष्यों को ये बातें समझ में आ जाए। क्या करें, कौन सी युक्तियां रचे जो मनुष्यों को ये बातें सहज समझ में आ जाए। शिव ही ज्ञान का सागर है, अब आत्मा को तो ज्ञान का सागर कैसे कहेंगे, जिसको शरीर नहीं है। हाँ, अभी शरीर तो उनको है नहीं तो उनको ज्ञान का सागर कैसे कहेंगे, इसका भी तो अर्थ है ना, शरीर ही नहीं है तो फिर ज्ञान का सागर कैसे है। तो बाबा कहते हैं वो ज्ञान का सागर किसी अन्य शरीर में प्रवेश होकर के ज्ञान देते हैं। तो बाबा कहते हैं शिव ही ज्ञान का सागर है, अब आत्मा को ज्ञान का सागर कैसे कहते हैं जिसको शरीर ही नहीं है। ज्ञान का सागर है, हाँ शरीर में प्रवेश करके सुनाते हैं ज्ञान, तो जरूर कभी ज्ञान सुनाया था ना। अगर ज्ञान का सागर उसकी महिमा है तो कभी तो ज्ञान सागर बन करके ज्ञान सुनाया था ना, तब तो उनको ज्ञान सागर कहते हैं। ऐसे तो क्यों कहेंगे किसी को ज्ञान सागर, जिसको ज्ञान ही नहीं है तो उसको ज्ञान सागर थोड़ी कहेंगे। कोई बहुत पढ़ते हैं तो भी कहा जाता है ये तो बहुत वेद शास्त्र पढ़ा है इसलिए उसको शास्त्री कहेंगे अथवा विद्वान कहा जाता है। हाँ बहुत पढ़ा है तो शास्त्री कहेंगे या विद्वान कहेंगे। बाप को ज्ञान का सागर अथॉरिटी कहा जाता है तो जरूर होकर के गए हैं, वो अथॉरिटी होकर के गए हैं तो हाँ आकर के ज्ञान दिया है तभी तो उनको ज्ञान का सागर कहते हैं हम। तो पहले तो पूछना चाहिए, बाबा कहते हैं प्रश्न पूछो किसी से कि अभी कलयुग है या सतयुग, पूछो उनसे ये कलयुग है या सतयुग, नई दुनिया है या पुरानी दुनिया। तो एम ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे सामने खड़ी है, लक्ष्मी नारायण बनना है, ये नई दुनिया के मालिक हैं। तो बाबा कहते हैं ये एम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने खड़ी है, ये लक्ष्मी नारायण अगर होते इस समय होते तो इन्हों का राज्य होता अभी। ये तो पुरानी दुनिया है, कंगाल पना ही नहीं होता। अगर लक्ष्मी नारायण इस समय राज्य करते होते तो ये पुरानी दुनिया, ये कंगाल पना थोड़ी होता। अभी तो सिर्फ इन्हों के चित्र हैं, मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, मंदिर में मूर्तियां दिखाते हैं ना, तो वो मूर्तियां भी कैसी है, मॉडल के रूप में मूर्तियां, कहाँ तो बहुत छोटी छोटी मूर्तियां भी दिखाते हैं। तो वो तो बाबा कहते हैं मंदिर में मॉडल्स दिखाते हैं, नहीं तो जब वो चेतन में थे तो ऐसे छोटे छोटे, हाँ वो चबूतरे में थोड़ी बैठे होंगे देवताएं। बाबा कहते हैं नहीं तो उनके महल बगीचे आदि कितने बड़े बड़े होंगे। सोचो तो देवताएं जहाँ रहते होंगे, कोई छोटे कोई एक मंदिर में थोड़ी रहते होंगे वो, किनके तो बहुत बड़े बड़े महल होंगे। सिर्फ मंदिर में थोड़ी रहते होंगे, प्रेसिडेंट का मकान देखो कितना बड़ा है। हाँ, राष्ट्रपति भवन में उस दिन हम कहाँ पढ़ रहे थे, उसमें कितने कमरे हैं, 32 तो कम से कम कहते हैं कमरे, बड़े बड़े कमरे। तो अभी क्या होता होगा उन कमरों में। तो बाबा कहते हैं प्रेसिडेंट का मकान कितना बड़ा है, देवी देवता तो बड़े बड़े महलों में रहते होंगे ना, या छोटे छोटे कमरों, एक एक कमरे में ऐसे रहते होंगे, बहुत जगह होगी उनकी। तो वहां डरने आदि की तो बात ही नहीं होती। आजकल तो देखते ना कईयों के बहुत बड़े बड़े मकान होते ना, उनको बहुत डर लगता है कि यहाँ कोई ऐसे चोर घुस ना आए, तो वो क्या करते हैं, ये बड़े बड़े मकानों को छोड़ के छोटे छोटे फ्लैट में रहते हैं, समझते वो छोटे फ्लैट ही सुरक्षित है, बड़े बड़े में रहेंगे तो पता नहीं क्या हो जाए, कोई ऐसे घुस आए। तो बाबा कहते हैं हाँ वहां डरने आदि की तो बात ही नहीं है, जो छोटे छोटे मकानों में जाकर के रहे। सदैव फुलवारी रहती है, क्या क्या होंगे बगीचे कैसे होंगे, कांटे तो होते ही नहीं है उन बगीचों में, कांटे कहीं भी नहीं होंगे, वो तो है ही बगीचा वहां तो, और क्या नहीं होगा वहां तो, लकड़ियां आदि भी नहीं जलाते होंगे। यहाँ तो मधुबन में अभी तो चलो गैस है, अभी तो केरोसिन है, बहुत कुछ है, पहले तो ये सब कुछ भी नहीं था मधुबन में, बेगरी पार्ट जैसे था तो कैसे थे। वो मधु पांडव भवन में जो जहाँ बिस्तरा डिपार्टमेंट है ना, वही किचन था, और लकड़ी लाते थे गांव से, बस वो लकड़ी जलाते थे, और लकड़ी से तो धुआं निकलता है तो बहुत आंखें जलती थी, जो भाई खाना पकाते थे हाँ उनकी उनकी आंखें जलती थी। तो फिर धीरे 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 कैसे सब परिवर्तन हुआ। तो बाबा कहते वहां तो लकड़ियां आदि जलाते ही नहीं है, लकड़ियों में धुआं होता है तो फिर दुख फील होता है ना, अब धुआं लगा लकड़ी जली धुआं आया तो दुख फील होगा ना आंखों को। वहां हम बहुत थोड़े टुकड़े में रहते हैं, थोड़े से लोग होंगे, जास्ती तो आबादी होगी नहीं, पीछे वृद्धि को पाते जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे बगीचे होंगे, खुशबू आती रहेगी, जंगल तो होगा ही नहीं। अभी फीलिंग आती है, देखते तो नहीं है, बाबा महसूस कराते हैं तो जैसे महसूस होता कि बरोबर होगा, अभी तो नहीं देख रहे हैं। तुम ध्यान में तो बड़े बड़े महल आदि देख आते हो, वो तो यहाँ बना नहीं सकते, इतने बड़े बड़े महल बाबा कहते यहाँ बना नहीं सकते। साक्षात्कार हुआ, फिर बाबा कहते साक्षात्कार हुआ फिर गुम हो जाएगा, वो तो थोड़ा समय देखा फिर गुम। साक्षात्कार किया तो है ना, बच्चों ने बहुत साक्षात्कार किया है, राजाएं प्रिंस प्रिंसेस होंगे, बहुत रमणीक स्वर्ग होगा, बहुत रमणीय स्वर्ग होगा। तो बाबा ने किसको याद किया, जैसे यहाँ मैसूर आदि रमणीक है, मैसूर में वृंदावन गार्डन है, बहुत सुंदर है हा? कलयुग की दुनिया की सुंदरता देखनी हो तो वृंदावन गार्डन में देखिए, मैसूर में। तो मैसूर आदि रमणीक है, ऐसे वहाँ बहुत अच्छी हवाएं लगती रहती है, पानी के झरने बहते रहते हैं। आत्मा समझती है हम अच्छी अच्छी चीजें बनाएं, कलयुग में भी तो यही समझते हैं हम अच्छी अच्छी चीजें बनाएं। आत्मा को स्वर्ग तो याद आता है ना, तुम बच्चों को अभी रियलाइज होता है, क्या महसूस होता है, क्या क्या होगा सतयुग में, कहाँ हम रहते होंगे। इस समय यह स्मृति रहती है, चित्रों को देखो तुम, चित्रों को देखो तुम कितने खुश नसीब हो। ये हम ही थे, अपने चित्रों को देख करके, देवताओं को देख करके बाबा कहते देखो तुम कितने खुश नसीब हो, वहां दुख की तो कोई बात ही नहीं होगी। हम तो स्वर्ग में थे, फिर नीचे उतरे, अब फिर स्वर्ग में जाएंगे। अब कैसे जाएंगे स्वर्ग में, नीचे तो उतर आए, अब कैसे जाएंगे स्वर्ग में। तो बाबा कहते क्या रस्सी में लटक कर जाएंगे, क्या रस्सी पकड़ेंगे और कोई ऊपर से खींचेगा और हम लटक करके रस्सी को पकड़ करके ऊपर जाएंगे, तो कैसे जाएंगे ऊपर, रस्सी में लटक कर जाएंगे क्या। हम आत्माएं तो रहने वाली ही शांति धाम में हैं, बाप ने स्मृति दिलाई है, अब तुम फिर देवता बन रहे हो और दूसरों को बना रहे हो। कितने घर बैठे भी साक्षात्कार करते हैं, बहुतों को होता है घर बैठे साक्षात्कार, बांदेलियों ने कभी देखा थोड़ी है, तो भी कैसे बाबा को याद करते हैं, कैसे आत्मा को उछल आती है। हाँ बाबा तो यही कहते हैं कि बांदेलियां तो और ही जास्ती मुझे याद करती है, बोले देखा भी नहीं है। कैसे आत्मा को उछल आती है, अपना घर नजदीक आने से आत्मा को खुशी होती है। समझते हैं बाबा हमको ज्ञान देकर श्रृंगारने आए हैं, आखिरी एक दिन अखबारों में भी पड़ेगा। अभी तो स्तुति निंदा मान अपमान सब सामने आता है, जानते हैं कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, जो सेकंड पास हो गया उसका चिंतन नहीं करना होता है। अखबारों में कल्प पहले भी ऐसे पड़ा था, ये मुरली उस समय की है जब कलकत्ता में बहुत बड़ी एग्जीबिशन रखी थी, तो आर्य समाजी लोग बहुत विरोध करते थे, बहुत विरोध था ब्रह्मा कुमारियों के विरुद्ध, बहुत ग्लानी करते थे, तो उन्होंने क्या किया कि आग लगा दी, सारी एग्जीबिशन को जला दिया। तो बाबा के पास ये बात गई, तो बाबा ने कहा बच्चे कोई बात नहीं, आगे से जब भी तुम ऐसे एग्जीबिशन लगाओ इंश्योर कर दो, इंश्योरेंस होगी तो फिर तुमको तो उसका हिस्सा मिल जाएगा, इंश्योर करो, अभी जो हुआ सो हुआ। फिर एक बार कलकत्ता में ये ज्यादा हुआ था, तो वहाँ बहुत उन्होंने गलत गलत बातें प्रचार में डाली, उस अखबार का नाम था क्या नाम था, ये बहुत अच्छा था, मैं अभी भूल रही हूँ, बहुत अच्छा नाम था, विश्वामित्र, विश्वामित्र उस अखबार का नाम था, कलकत्ता में छपती है। तो बाबा को लिखा, बाबा को बताया कि बाबा इस अखबार में ब्रह्मा कुमारियों के लिए बहुत गलत गलत बातें लिखी है। तो बाबा ने जगदीश भाई को बुलाया और जगदीश भाई को कहा कि बच्चे तुम लेटर टू द एडिटर लिखो, लेटर टू द एडिटर होता है ना, लोग लिखते एडिटर को, तो तुम उसको लिखो आपकी अखबार का नाम बहुत अच्छा है कि तुम विश्वामित्र, हाँ विश्व का मित्र, लेकिन सबसे बड़े मित्र तो आप हमारे हो, क्योंकि आपने इतनी ग्लानी की बातें लिखी है तो लोगों के अंदर तो उत्सुकता होगी ना, हम जाके देखे तो सही ये क्या लिखा, तो जाके देखे तो सही ना, तो और ही आएंगे, और ही तुम हमारी प्रोपेगेंडा कर रहे हो, खाली ग्लानी नहीं कर रहे हो प्रोपेगेंडा कर रहे हो, तो बच्चे इसीलिए घबराओ मत। तो बाबा ने कहा है तो अब तो बाबा कहते हैं अखबारों में कल्प पहले भी ऐसे पड़ा था, फिर पुरुषार्थ किया जाता है, हंगामा तो जो हुआ सो हो गया। अब हंगामा हुआ, जला दिया एग्जीबिशन, बाबा कहते उसको तो हो गया, नाम तो हो गया ना, फिर तुम रेस्पॉन्ड करते हो। कहा फिर अखबार में अगर वो कुछ गलत डालते हैं तो फिर उसका तुम जवाब देते हो, कोई पढ़ते हैं कोई नहीं पढ़ते हैं, फुर्सत ही नहीं मिलती है और कामों में लग जाते हैं। अब तुम्हारी बुद्धि में है यह बेहद का बड़ा ड्रामा है, टिक टिक चलती रहती है। कैसे चलती है? जैसे घड़ी की सुई टिक टिक चलती रहती है, चक्र फिरता रहता है, एक सेकंड में जो पास हुआ फिर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होगा, जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है, जो हो गया सेकंड बाद ख्याल में आता है, ये भूल हो गई पर ड्रामा में तो नोंद था तो हो गया। कल्प पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, पास्ट हो गई, अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे, है ना। कई ऐसे है बस अच्छा भूल हो गई कोई बात नहीं, ड्रामा ड्रामा बस ड्रामा ड्रामा कह करके अलबेले हो जाते हैं, लेकिन साथ में ये भी तो जोड़ो ना कि आगे नहीं करेंगे, खाली ड्रामा कह के छोड़ थोड़ी देना। तो बाबा कहते हैं तुमको तो पहले भी ऐसे ही भूल हुई थी, पास्ट हो गई, अब फिर आगे के लिए नहीं करेंगे, पुरुषार्थ तो करते रहते हैं। तो तुमको समझाया जाता है घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं है, चलो एक बार भूल हुई सॉरी किया माफी मांगी, फिर दोबारा तो नहीं करो ना वो भूल, घड़ी घड़ी ये भूल अच्छी नहीं है, ये कर्म अच्छा नहीं है, तो दिल खाती होगी। अब कोई गलती करेगा अंदर में, चलो छिपाएगा भी किसी को पता नहीं भी चलेगा, लेकिन उसका अंदर का मन तो खाएगा ना, दिल तो खाती होगी, हमसे ये खराब काम हुआ है तो बाप समझाने देते हैं बच्चे ऐसे नहीं करो, किसको दुख होगा, मना की जाती है बच्चों को ये ऐसे करने लिए, कोई भी गलत बात बाप बतला देते हैं, ये काम नहीं करना, बिगर पूछे चीज उठाना ये भी गलत है। अब जिसकी चार्ज में है उससे बिना पूछे वो चीज उठा लेना, तो बाबा कहते फिर वो ढूंढेगा ये चीज हमने यहाँ रखी थी कौन ले गया, तो कितने व्यर्थ संकल्प चलेंगे उसके, तो उठाना ही क्यों, अगर चाहिए तो आप पूछो तो सही, पूछ के भले लो अगर वो छुट्टी देता है तो। तो बाबा कहते बिगर पूछे चीज उठाया उसको चोरी कहा जाता है, ये चोरी हो गई बिना पूछे चीज उठा ली उसको चोरी कहा जाता है, ऐसा काम मत करो। फिर दूसरा बाबा कहते कड़वा मत बोलो, ऐसे मुख से बोलते ना कटाक्ष, हर वक्त मुख से कटाक्ष ही निकलता है और समझ हम तो हंस रहे हैं परंतु वो कटाक्ष है, दूसरे को बुरा लगेगा दुख होगा तो ऐसे शब्द बोलना ही क्यों चाहिए। तो बाबा कहते हैं कड़वा मत बोलो, आजकल दुनिया देखो कैसी है, कैसी दुनिया है, कोई नौकर पर भी गुस्सा किया तो वो भी दुश्मनी करने लग पड़ते हैं, नौकर को थोड़ा गुस्सा किया वो नौकर दुश्मन बन जाता है और क्या क्या हाँ मालिक के लिए कितना नुकसान कर लेता है, वो तो वो दुश्मनी करने लग पड़ते हैं। अब सतयुग में तो शेर बकरी भी आपस में खीर खंड हो रहते हैं, लून पानी और खीर खंड, सतयुग में सब मनुष्य आत्माएं आपस में खीर खंड रहती है और इस रावण की दुनिया में सब मनुष्य लून पानी है, तो बाप बच्चा भी लून पानी, बाप और बेटा भी लून पानी है ना। बाप से बेटे ने कुछ मांगा, बाप ने कहा नहीं बेटा अभी मेरे पास इतना पैसा नहीं है मैं नहीं दे सकता हूँ, बस वो बच्चा जा करके आत्महत्या कर ली या बच्चे ने जा करके बाप को मार डाला, कई क्या क्या कलयुग में होता रहता है। तो बाबा कहते हैं तो तो बाबा कहते हैं हाँ, तो बाप बच्चे भी लूण पानी आपस में हो जाते हैं, लौकिक में पिता और पुत्र भी आपस में लड़ते हैं तो जैसे लूण पानी, बाप बच्चा भी लूण पानी। काम महाशत्रु है ना, काम कटारी चलाए एक दो को दुख देते हैं, ये सारी दुनिया ही अभी लूण पानी है, सारी दुनिया नमक पानी है अभी, सतयुगी दुनिया खीर खंड है। तो इन बातों से दुनिया क्या जाने, मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं तो कोई बात बुद्धि में आ न सके, जो देवताएं थे उन्हों को ही स्मृति में आता है। अभी हम देवताएं थे तो अभी हम सुन रहे हैं तो स्मृति में आता है बरोबर हम कितने ऊंचे थे। तुम जानते हो ये देवी देवताएं सतयुग में थे, जिसने 84 जन्म लिए हैं वही फिर से आकर के पढ़ेंगे और कांटों से फूल बनेंगे। ये बाप की एक ही यूनिवर्सिटी है, इनकी ब्रांचेस निकलती रहती है, मधुबन माउंट आबू हेडक्वार्टर्स है, बाकी इनकी सब ब्रांचेस निकलती रहती है। खुदा जब आएगा तब उनके खिदमतगार बनेंगे, जिनके द्वारा खुद खुदा राजाई स्थापन करेंगे, खुदा खुद ही आकर के राजाई स्थापन करते, फिर हम खुदाई खिदमतगार बनते हैं। तुम समझते हो हम खुदा के खिदमतगार हैं, परमात्मा के मददगार हैं, शिव बाबा के मददगार हैं, खुदा के खिदमतगार हैं। वो जिस्मानी खिदमत करते हैं, सोशल वर्कर जो भी है वो जिस्मानी सेवाएं करते हैं, और ये है रूहानी। तो बाबा हम आत्माओं को रूहानी सर्विस सिखलाते रहे हैं, क्योंकि रूह ही तमो प्रधान बन गई है। अब रूह सतो प्रधान बने तो सब सतो प्रधान बन जाए। फिर बाबा सतो प्रधान बना रहे हैं तो बाबा कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, ये योग अग्नि है। भारत का प्राचीन योग गाया हुआ है, आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं, योग के नाम पर योगा कह करके हठयोगी सिखाते हैं, तो बाबा कहते हैं आर्टिफिशियल योग तो बहुत हो गए हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं योग शब्द नहीं कहो, क्या कहो, याद की यात्रा कहना ठीक है, याद की यात्रा। शिव बाबा को याद करते करते तुम शिवपुरी में चले जाएंगे, अब वो है शिवपुरी और वो है सतयुग है विष्णुपुरी, और ये है बाबा कहते रावणपुरी, शिवपुरी विष्णुपुरी फिर रावणपुरी, विष्णुपुरी के पीछे है फिर रामपुरी, सतयुग विष्णुपुरी त्रेतायुग रामपुरी, सूर्यवंशी के बाद फिर चंद्रवंशी। अब ये तो कॉमन बात है, आधा कल्प सतयुग त्रेता फिर आधा कल्प द्वापर कलयुग, अभी तुम संगम पर हो, ये भी सिर्फ तुम ही जानते हो कि हम संगम पर हैं। जो अच्छी रीति धारणा करते हैं वो फिर दूसरों को भी समझाते हैं, हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं। ये किसकी बुद्धि में याद रहे तो भी सारा ड्रामा बुद्धि में आ जाए, केवल ये याद रहे हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं तो सारा ड्रामा ही याद आ जाए। परंतु कलयुगी देह के संबंधी आदि याद आते रहते हैं, बच्चों को बाबा याद ही नहीं आता है, देह के जो संबंधी है कलयुग के वही याद आते रहते हैं। तो बाप कहते हैं तुमको याद करना है एक बाप को, सर्व का सदगति दाता राजयोग सिखलाने वाला एक ही है, इसलिए वो एक ही है, इसीलिए बाबा ने समझाया है शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाते हैं, शिव बाबा की ही जयंती है जो सारी दुनिया को पलटाते हैं ना, उनका ही जयंती, उनकी जयंती का ही महत्व है क्योंकि सारी दुनिया को पलटाते हैं। तुम ब्राह्मणी जानते हो, अब हम पुरुषोत्तम संगम युग पर हैं, जो ब्राह्मण है उनको ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। हम ब्राह्मणों को ही रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जिससे किसी को दुख हो। कड़वे बोल नहीं बोलने हैं, बहुत बहुत खीर खंड होकर रहना है। दूसरा, किसी भी देहधारी की स्तुति नहीं करनी है। बुद्धि में रहे हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं, उस एक की ही महिमा करनी है। रूहानी खिदमतगार बनना है। वरदान, शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा, व्रत माना दृढ़ता, उतना दृढ़ हो, शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भवन। बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है, इतना पवित्र है, जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्माएं ही बैठ सकती है। शिव बाबा के दिल तख्त पर कौन बैठ सकते हैं? केवल प्योर आत्माएं, पवित्र आत्माएं बैठ सकती है। जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या अमर्यादा आ जाती है, वो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करो। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही है। क्या है प्रत्यक्ष फल? इस शुद्ध संकल्प या दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। पर उसके लिए क्या चाहिए? शुद्ध संकल्प का व्रत, और जिससे वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भवन। स्लोगन, जहां सर्व शक्तियां साथ है वहां निर्विघ्न सफलता है ही। जहां सर्व शक्तियां साथ है वहां निर्विघ्न सफलता है ही। अव्यक्ति इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। उसके अंतर्गत अंतःवाहक स्थिति। अब क्या है अंतःवाहक स्थिति? अंतःवाहक स्थिति अर्थात कर्म बंधन मुक्त कर्मातीत स्थिति। कर्मातीत स्थिति को बाबा कहते अंतःवाहक स्थिति। कर्मातीत स्थिति का वाहन अर्थात अंतिम वाहन, जिस द्वारा ही सेकंड में साथ में उड़ेंगे बाबा के साथ, अंतवाहक स्थिति द्वारा। इसके लिए सर्व हदों से पार बेहद स्वरूप में बेहद के सेवाधारी सर्व हदों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न बनो। तब ही अंतिम कर्मातीत स्वरूप के अनुभवी स्वरूप बनेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाबा को भोग लगाएंगे, उसके पहले मैं डबल विदेशियों का प्रोग्राम बता दूं। आई विल अनाउंस टुडेज डबल फॉरेनर्स प्रोग्राम, 9 AM to 10 AM पर्सनल मीटिंग विद सिस्टर दीप्ति, If anyone wants to have a personal meeting with Sister Dipti, then you can go to Harmony Hall sitting room. In the sitting room of Harmony Hall, Sister Dipti can meet those who want to meet her personally. Then 9:30, so I would like to inform double foreigners that today is cultural program in Gyan Sarovar. Cultural program where all of you are invited, and also dinner will be served to all of you. So at 9:30, those who are performing in cultural program tonight are requested to be in Harmony Hall with their music for rehearsal. Then 10:15 to 10:30 meditation, and 10:30 to 12 is general class. It is in the Dadi Janki Park, general class. It's a workshop with Sister Dipti of South Africa. And the topic is stepping into the inner treasures of Christmas. So please bring notebook and pen with you to Dadi Janki's park at 10:15. Then in the evening, 5:30 to 6 meditation in the Harmony Hall, and 6 to 7:30 lights of joy and rhythms of Christmas. So cultural program in the Harmony Hall of Gyan Sarovar. Then all of you will have dinner there and then come back. Om Shanti.
Om Shanti. Aaj hum sab ke liye bahut hi vishesh din hai. Duniya mein, pure vishv mein सभी क्रिसमस सेलिब्रेशन कर रहे हैं. हम बच्चों के लिए भी बाबा बहुत प्यार से बधाइयां भी देते हैं, बधाइयों के साथ साथ ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं, वरदान देते हैं. तो इसलिए आज के दिन प्यारे बाबा की तरफ से और हम सब की तरफ से आपको क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं हैं. और क्रिसमस फादर तो सदा ही बच्चों का ध्यान रखते हैं और बच्चों को भरपूर करते हैं. तो आज का दिन ड्रामा अनुसार बच्चों को बाबा भी हर प्रकार से भरपूर करेंगे. और बाबा तो सदा बच्चों को हर प्रकार से कई प्रकार के खजानों से भरपूर करते हैं, और बच्चों को भी उन खजानों से स्वयं को भरपूर करके दूसरों को भी देते रहना है. तो जैसा कि आपको बताया कि क्रिसमस के निमित्त आज ज्ञान सरोवर में प्रोग्राम रखा गया है. शाम को 6 बजे से 8 बजे तक है, जिसके लिए मधुबन निवासी अन्य सभी भाई बहनों को निमंत्रण है. जिनके पास ट्रांसपोर्ट का साधन है वे अवश्य ही जाएं, और जो भी जाएंगे प्रोग्राम के लिए वहां पर वो भोजन भी करके आएंगे. तो शाम के प्रोग्राम के लिए आपको निमंत्रण दे रहे हैं, और जो भी जाएंगे भोजन स्वीकार करके आएंगे. और आज तो गुरुवार है, प्यारे प्यारे बाबा का दिन है, और हम सब मिलकर के प्यारे बाबा के पास जाएंगे और बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे. और भोग के बाद बाबा जो सुनाएंगे वो सुनेंगे, और उसके बाद 4 लाइन में अमृत होगा. 1 लाइन होगी भाइयों की और 1 लाइन होगी डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स. डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स रेज योर हैंड. वो सब आएंगे दिस कैमरा साइड, दे विल कम टू कैमरा साइड. शिलुमेन विल गिव नेक्टर टू डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स. और 2 और लाइन होंगी अन्य बहनों की, 1 लाइन भाइयों की. 1 लाइन फॉर डबल फॉरेन सिस्टर्स एंड ब्रदर्स फॉर नेक्टर. दे विल असेंबल टू ब्रदर्स साइड नियर दिस कैमरा. बाकी 2 लाइनें होंगी अन्य बहनों की. आप सबको अमृत मिलेगा, और आज हम सब प्यारे बाबा के पास जाएंगे और बाबा से मीठी मीठी रू रूहान भी करेंगे, बाबा को अपना याद प्यार भी देंगे. और आज के दिन बाबा तो बच्चों को वतन में इमर्ज करके हर तरह से भरपूर करेंगे. अच्छा, ओम शांति.
तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। या प्रभु संग संग बाबा, यूं ही आ प्रभु संग संग बाबा, इस दुनिया के सुख पाने क्या, इस दुनिया के सुख पाने क्या, लहराते रहे तेरी यादों में, लहराते रहे तेरी यादों में, उन यादों में खो जाएंगे, उन यादों में खो जाएंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद में जीते हैं बाबा, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे, बस और न हम कुछ चाहेंगे, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं।
जो माता खड़े हो गए हैं आप बैठ जाओ, अभी बाबा का संदेश सुनेंगे, उसके बाद हम लोग खेलेंगे।
ओम शांति। आज सतगुरुवार के दिन सबकी यादों के साथ, जैसे ही मैं वतन में पहुंची, वहां जाते ही क्या देखती हूँ, वतन में चारों ही तरफ बहुत सुंदर सुंदर मॉडल सजे हुए दिखाई दे रहे थे और बाबा के बहुत से बच्चे उन मॉडल्स को देख देख करके बहुत हर्षित हो रहे थे। लेकिन बाबा बहुत दूरी से ऊपर से ये दृश्य देख रहे थे। कुछ सेकंड में क्या देखती हूँ, सब बच्चे कोई किस मॉडल के पास और कोई किस मॉडल के पास जाकर खड़ा हो जाता है, ध्यान से देखते हैं, और कोई उसको हाथ लगाता है, कोई उसको गले लग के मिल रहा है, कोई उसके साथ खड़े हैं और कोई मॉडल को ऐसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। बाबा दृश्य देख करके मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने इशारे से मेरे को कहा, बच्ची आप भी आओ। तो जैसे मैं उड़ते हुए बाबा के पास बहुत ऊंचाई पर पहुंच गई तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे क्या कर रहे हैं। देखते देखते कुछ मॉडल्स तो जैसे बच्चे उसको पकड़ते थे, कुछ मॉडल्स तो ऊपर की ओर उड़ करके एकदम जैसे दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ मॉडल ऐसे टेढ़े होने लगे और कुछ मॉडल्स थोड़े कम हो गए, छोटा बड़ा दिखाई दे रहा था, और कुछ मॉडल तो ऐसे टूट टूट करके और बिल्कुल ही खत्म हो गए। तो बाबा ने कहा, देखा बच्ची, बाबा बच्चों को इस संगम युग के अंदर विश्व के सामने रोल मॉडल बना रहे हैं और बाबा बच्चों के चित्र और चरित्र के द्वारा बाप की प्रत्यक्षता के लिए बाबा ने बच्चों को वैसे स्वरूप में बनाया है और संगम युग के अंदर बाबा बच्चों को इतना ऊंच बना देते हैं जो सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। लेकिन अभी भी कई कई बच्चे ऐसे हैं जिनकी कई बातों में माइंड के अंदर डायवर्शन हो जाता है। जैसे वो डायवर्शन होता है, वैसा उदाहरण बाबा ने कहा कि ये जो मॉडल एक तरफ घूम गया है, कई बच्चे अभी भी श्री मत के अंदर मन मत को या अपनी बातें ऐड करते हैं तो वो डायवर्शन होने के कारण बाबा जो चाहते हैं कि बच्चे एकदम संपन्न और ऐसे स्वरूप में टिके जो विश्व की आत्माओं को अनुभूति और साक्षात्कार हो। दूसरी बात कही बाबा ने, कई बच्चे अभी भी बाहरी बातों के आकर्षण की ओर प्रभावित हैं, जिस कारण से बाबा ने जो उनकी स्थिति बनाई है वो आकर्षण उनकी स्थिति को बिल्कुल हवा की तरह उड़ा देता है। फिर तीसरा बाबा ने कहा, ऐसे भी बच्चे हैं जो हर समय मैं मेरा मैं जो कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता, तो मैंपन के कारण वो मॉडल जो है वो एकदम बिल्कुल नीचे गिर जाते हैं। तो मैंने कहा, बाबा बच्चे इतना अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, बहुत सेवा कर रहे हैं, लगन से कुछ कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा, हाँ बाबा भी जानते हैं, बच्चों के पुरुषार्थ को देख करके बाबा खुश भी हैं, लेकिन एक बात बाबा ने कहा कि हर बच्चे को ध्यान रखना है कि बाबा करण करावनहार है और बच्चे निमित्त हैं, और बाबा ने जो बच्चों को जिम्मेवारी दी है वो उसको निभाने में बाप की प्रत्यक्षता करने के लिए अभी वो समय आ रहा है बाप की प्रत्यक्षता के लिए। फिर बाबा ने क्या किया, एक सेकंड में क्या देखती हूँ, सब बच्चों को सामने ला करके बाबा ने सब बच्चों के सिर के ऊपर मुकुट था, बहुत सुंदर मुकुट था, और हर एक को एक बहुत सुंदर गोल्डन चमकती हुई जैसे चुन्नी ऐसे डला होता वो डाला हुआ था, और हाथ के अंदर सबके अंदर एक बहुत सुंदर चमकती हुई टोकरी थी और उस टोकरी के अंदर एंजल्स दिखाई दे रहे थे। तो बाबा ने सबको दिया। तो बाबा ने कहा, देखो बच्चे, आज बाबा बच्चों को
गिफ्ट दे रहे हैं, तो सब बहुत खुश हुए। सब एक दूसरे का ताज देख रहे थे, एक दूसरे की ड्रेस को देख करके बहुत खुश हो रहे थे। बाबा ने कहा कि आज के दिन लोग परमात्मा को, भगवान को ऐसे स्वरूप में याद कर रहे हैं कि वो देने वाला है और शांता क्लाउस के रूप में, लेकिन बच्चे जो है बाप समान मास्टर दाता और वरदाता है। तो बाबा ने कहा कि बाबा ने जो मुकुट दिया है वो मुकुट है बाप की हर कार्य को संपन्न बनाने के लिए, उसके अंदर परफेक्शन। और दूसरा बाबा ने कहा कि बाबा ने जो चुन्नी पहनाई है ये है फरिश्ता रूप की चुन्नी, और जो टोकरी दिखाई दिया वो टोकरी है वरदानों से भरपूर। बाबा ने कहा आज के दिन दुनिया में वो लोग मानते हैं कि शांता क्लाउस अपने बच्चों को बहुत से खिलौने देते हैं, तो बाबा ने सबको कहा देखो इस टोकरी में क्या है। उस टोकरी में क्या देखते थे, एंजल निकलता था और एंजल के हाथ में ब्लेसिंग थी, और जैसे वो खोला वो एंजल चारों तरफ फैलते और वो ब्लेसिंग के वाइब्रेशन चारों तरफ फैल रहे थे। तो बाबा ने कहा आज के दिन बाबा बच्चों को विशेष वरदान दे रहे हैं, सदा संतुष्ट रहना है और खुशियां बांटते रहना है। तो सब बच्चे उसी स्वरूप के अंदर टिक गए और सबके सब ऐसे स्वरूप में दिखाई दे रहे थे। बाहर से लोग देख रहे थे, कोई ऐसे बाहें पसार करके मांग रहा है, कोई खुशियों के चीजें देख रहा है, कोई खुशियों में नाच रहा है। बाबा ने कहा आज का दिन है भरपूर रह करके, वरदानों से भरपूर रहना है, संतुष्ट रह के खुशियां बांटना है। बाबा जैसे दाता विधाता हैं, तो दाता के बच्चे मास्टर दाता और मास्टर वरदानी बन करके सबको भरपूर करो। फिर बाबा ने क्या किया, अपने हाथ से भोग का कवर उठाया और सबको अपने हाथ से भोग खिलाने लगे। मैंने कहा नहीं बाबा, पहले तो हम आपको खिलाएंगे। बाबा ने कहा नहीं, आज बाबा वरदाता के रूप में, दाता के रूप में पहले बच्चों को। तो जैसे बाबा को मैंने मुख में खिलाना शुरू किया, उसी समय बाबा ने सब बच्चों को इमर्ज करते हुए मुख मीठा कराते हुए कहा सदा हर समय कुछ भी हो जाए खुश रहना है, संतुष्ट रहना है और सदा खुशियों के वाइब्रेशन फैलाने हैं। फिर उसके बाद बाबा को मैंने जिनके भोग थे उनके निमित्त याद प्यार दिया। बाबा ने उन सबको इमर्ज करते हुए रिटर्न में भी उनको याद प्यार दिया। ओम शांति।